पहला सलातीन 20वां बाब। और अराम के बादशाह बिन हदद ने अपने सारे लश्कर को इकट्ठा किया और उसके साथ बेकिस बादशाह और घोड़े और रथ थे, और उसने सामरिया पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और उससे लड़ा। और इसराइल के बादशाह अखियब के पास शहर में कासद रवाना किए और उसे कहला भेजा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि तेरी चांदी और तेरा सोना मेरा है, तेरी बीवियों और तेरे लड़कों में जो सबसे खूबसूरत हैं वो मेरे हैं। इसराइल के बादशाह ने जवाब दिया, ए मेरे मालिक बादशाह, तेरे कहने के मुताबिक मैं और जो कुछ मेरे पास है सब तेरा ही है। फिर उन कासदों ने दोबारा आकर कहा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे कहला भेजा था कि तू अपनी चांदी और सोना और अपनी बीवियों और अपने लड़के मेरे हवाला कर दे, लेकिन अब मैं कल इसी वक्त अपने खादिमों को तेरे पास भेजूंगा, सो वो तेरे घर और तेरे खादिमों के घरों की तलाशी लेंगे और जो कुछ तेरी निगाह में नफीस होगा वो उसे अपने कब्जा में करके ले आएंगे। तब इसराइल के बादशाह ने मुल्क के सब बुजुर्गों को बुलाकर कहा, जरा गौर करो और देखो कि ये शख्स किस तरह शरारत के दर पे है, क्योंकि उसने मेरी बीवियां और मेरे लड़के और मेरी चांदी और मेरा सोना मुझसे मंगा भेजा और मैंने उससे इनकार नहीं किया। तब सब बुजुर्गों और सब लोगों ने उससे कहा कि तू मत सुन और मत मान। बस उसने बिन हदद के कासिदों से कहा, मेरे मालिक बादशाह से कहना, जो कुछ तूने अपने खादिम से पहले तलब किया वो तो मैं करूंगा, पर ये बात मुझसे नहीं हो सकती। सो कासद रवाना हुए और उसे ये जवाब सुना दिया। तब बिन हदद ने उसको कहला भेजा कि अगर सामरिया की मिट्टी उन सब लोगों के लिए जो मेरे पैरों हैं मुट्ठियां भरने को भी काफी हो तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करें। शाह इसराइल ने जवाब दिया, तुम उससे कहना कि जो हथियार बांधता है वो उसकी मानिंद फखर ना करे जो उसे उतारता है। जब बिन हदद ने जो बादशाहों के साथ साहिबानों में मैनूशी कर रहा था ये पैगाम सुना तो अपने मुलाजिमों को हुक्म किया कि सफ बांध लो। सो उन्होंने शहर पर चढ़ाई करने के लिए सफ आराई की, और देखो एक नबी ने शाहे इसराइल अखियब के पास आकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तूने इस बड़े हजूम को देख लिया, मैं आज ही उसे तेरे हाथ में कर दूंगा और तू जान लेगा कि खुदावंद मैं ही हूं। तब अखियब ने पूछा, किसके वसीला से? उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि सूबों के सरदारों के जवानों के वसीला से। फिर उसने पूछा कि लड़ाई कौन शुरू करे? उसने जवाब दिया कि तू। तब उसने सूबों के सरदारों के जवानों को शुमार किया और वो 232 निकले। उनके बाद उसने सब लोगों यानी सब इसराइल की मौजूदात ली और वो 7,000 थे। ये सब दोपहर को निकले और बिन हदद और वो 32 बादशाह जो उसके मददगार थे साहिबानों में पी पी कर मस्त होते जाते थे। सो सूबों के सरदारों के जवान पहले निकले और बिन हदद ने आदमी भेजे और उन्होंने उसे खबर दी कि सामरिया से लोग निकले हैं। उसने कहा, अगर वो सुला जो होकर निकले हों तो उनको जीता पकड़ लो, और अगर वो जंग को निकले हों तो भी उनको जीता पकड़ो। तब सूबों के सरदारों के जवान और वो लश्कर जो उनके पीछे हो लिया था शहर से बाहर निकले, और उनमें से एक एक ने अपने मुखालिफ को कत्ल किया। सो अरामी भागे और इसराइल ने उनका पीछा किया, और शाह अराम बिन हदद एक घोड़े पर सवार होकर सवारों के साथ भागकर बच गया, और शाह इसराइल ने निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अमोरियों को बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। और वो नबी शाह इसराइल के पास आया और उससे कहा, जा अपने को मजबूत कर और जो कुछ तू करे उसे गौर से देख लेना, क्योंकि अगले साल शाह आराम फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। और शाह आराम के खादिमों ने उससे कहा, उनका खुदा पहाड़ी खुदा है, इसलिए वो हम पर गालिब आए, लेकिन हमको उनके साथ मैदान में लड़ने दे तो जरूर हम उन पर गालिब होंगे। और एक काम ये कर कि बादशाहों को हटा दे, यानी हर एक को उसके ओहदा से मौजूल कर दे, और उनकी जगह सरदारों को मुकरर कर, और अपने लिए एक लश्कर अपनी उस फौज की तरह जो तबाह हो गई, घोड़े की जगह घोड़ा और रथ की जगह रथ गिन कर तैयार कर ले, और हम मैदान में उनसे लड़ेंगे और जरूर उन पर गालिब होंगे। सो उसने उनका कहा माना और ऐसा ही किया। और अगले साल बिन हदद ने अरामियों की मौजूदात ली और इसराइल से लड़ने के लिए अफीक को गया, और बनी इसराइल की मौजूदात भी ली गई और उनकी रसद का इंतजाम किया गया, और ये उनसे लड़ने को गए, और बनी इसराइल उनके बराबर खैमा जन होकर ऐसे मालूम होते थे जैसे हलवानों के दो छोटे रेवड़, पर अरामियों से वो मुल्क भर गया था। तब एक मर्द खुदा इसराइल के बादशाह के पास आया और उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि चूंकि अरामियों ने यूं कहा है कि खुदावंद पहाड़ी खुदा है और वादियों का खुदा नहीं, इसलिए मैं इस सारे बड़े हजूम को तेरे हाथ में कर दूंगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद हूं। और वो एक दूसरे के मुकाबले 7 दिन तक खैमाजन रहे, और 7वें दिन जंग छिड़ गई, और बनी इसराइल ने 1 दिन में अरामियों के 100,000 प्यादे कत्ल कर दिए, और बाकी अफीक को शहर के अंदर भाग गए, और वहां एक दीवार 27,000 पर जो बाकी रहे थे गिरी, और बिन हदद भागकर शहर के अंदर एक अंदरूनी कोठड़ी में घुस गया, और उसके खादिमों ने उससे कहा, देख हमने सुना है कि इसराइल के घराने के बादशाह रहीम होते हैं, सो हमको जरा अपनी कमरों पर टाट और अपने सिरों पर रस्सियां बांधकर शाह इसराइल के हजूर जाने दे, शायद वो तेरी जान बख्शी करे। सो उन्होंने अपनी कमरों पर टाट और सिरों पर रस्सियां बांधी और शाह इसराइल के हजूर आकर कहा कि तेरा खादिम बिन हदद यूं अर्ज करता है कि मेहरबानी करके मुझे जीने दे। उसने कहा, क्या वो अब तक जीता है? वो मेरा भाई है। वो लोग बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे, सो उन्होंने उसका दिली मंशा दरियाफ्त करने के लिए झट उससे कहा कि तेरा भाई بن حدد۔ تب اس نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے آؤ۔ تب بن حدد اس سے ملنے کو نکلا اور اس نے اسے اپنے رتھ پر چڑھا لیا، اور بن حدد نے اس سے کہا، جن شہروں کو میرے باپ نے تیرے باپ سے لے لیا تھا میں ان کو پھیر دوں گا، اور تو اپنے لیے دمشق میں سڑکیں بنوا لینا جیسے میرے باپ نے سامریا میں بنوائیں۔ اخیب نے کہا، میں اسی عہد پر تجھے چھوڑ دوں گا۔ سو اس نے اس سے عہد باندھا اور اسے چھوڑ دیا۔ سو انبیاء زادوں میں سے ایک نے خداوند کے حکم سے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے مار، پر اس نے اسے مارنے سے انکار کیا۔ تب اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ تُو نے خداوند کی بات نہیں مانی، سو دیکھ، جیسے ہی تُو میرے پاس سے روانہ ہوگا ایک شیر تجھے مار ڈالے گا۔ سو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا اسے ایک شیر ملا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اسے ایک اور شخص ملا، اس نے اس سے کہا، مجھے مار۔ اس نے اسے مارا اور مار کر زخمی کر دیا۔ تب وہ نبی چلا گیا اور بادشاہ کے انتظار میں راستہ پر ٹھہرا رہا، اور اپنی آنکھوں پر اپنی پگڑی لپیٹ لی اور اپنا بھیس بدل ڈالا۔ جیسے ہی بادشاہ ادھر سے گزرا اس نے بادشاہ کی دوہائی دی اور کہا کہ تیرا خادم جنگ ہوتے میں وہاں چلا گیا تھا، اور دیکھ ایک شخص ادھر مڑ کر ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا اور کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کر، اگر یہ کسی طرح غائب ہو جائے تو اس کی جان کے بدلے تیری جان جائے گی، اور نہیں تو تجھے ایک کنتار چاندی دینا پڑے گی۔ جب تیرا خادم ادھر ادھر مصروف تھا وہ چلتا بنا۔ شاہ اسرائیل نے اس سے کہا، تجھ پر ویسا ہی فتویٰ ہوگا، تو نے آپ اس کا فیصلہ کیا۔ تب اس نے جھٹ اپنی آنکھوں پر سے پگڑی ہٹا دی، اور شاہ اسرائیل نے اسے پہچانا کہ وہ نبیوں میں سے ہے، اور اس نے اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تُو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا، سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے۔ سو شاہ اسرائیل اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریا میں آیا۔